بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. آج سنڈے 13 مارچ ہے اور یہ سوال و جواب کی نشست ہے. مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو کچھ سوال میرے پاس ہیں، کچھ مفتی صاحب کے پاس بھی کچھ سوال ہے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب شروع کیجئے.
پہلا سوال جو جناب والا نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں 40,000 مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا گیا اور ان سے لے کے اب پھر انہیں مندروں کو مٹا کر اور مساجد میں تبدیل کیا جائے، یہ سراسر بہتان اور جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی بھی قوم، فرقے، فریق مخالف کی مخالفت تمہیں اتنا نہ گرا دے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ انصاف نہ کرو، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف کرو. وہ اقرب للتقویٰ، اور تقویٰ کا تقاضا یہی. کہاں ہے وہ 40,000 مساجد، اور کون کون سا مندر ہے جس کو کسی بھی گروہ نے مسجد کو ختم کر کے اس کا مندر بنا دیا؟ اکا دکا کوئی واقعات ہوں ضرور مل جائیں گے، لیکن 40,000 اتنی بڑی فگر ہے کہ یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ سب جھوٹ.
جی، اس میں ایک تصحیح ہے کہ ان کو مندر تھے، ان کو مسجد بنایا گیا. 40,000 مندروں کو مسلمانوں نے مسجد بنایا. معذرت لیتا ہوں،
پہلے بات الٹی ہو گئی.
جی،
40,000 مندروں کو مسلمانوں نے مسجد بنایا، ایسے بھی نہیں.
جی جی،
بالکل غلط بات. کون ایسے کرا سکتا تھا؟ مغل بادشاہوں کی حکمرانی تھی، ہندوؤں کو پوری رعایتیں مراعات حاصل تھیں، مسلسل ترقیاں ہوتی رہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ بدنام ہے، اور اورنگزیب نے جتنی نیکی اور اچھائی دوسرے حضرات کے ساتھ کی، قطعاً کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی اکا دکا واقعہ ہوا ہو تو ہوا ہو. آپ دیکھیں اکبر بادشاہ، یہ گولڈن ٹیمپل جو بنا ہوا ہے، اور سکھ حضرات کا وہ گویا کہ بیت اللہ ہے، یہ ساری زمین اور سارا کچھ اکبر بادشاہی نے تو کیا ہے. اسی نے تو ان لوگوں کو زمینیں دی تھی، اور اسی نے ان لوگوں کے مذہب کا احترام زیادہ کیا. اسی طرح مسلمان ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے حضرات کا خیال رکھتے رہے. آپ کو پوری ہسٹری میں یہ پورا واقعہ مل جائے گا کہ اس درجے کا آدمی تھا جسے کور کمانڈر ہوتا ہے. تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پروموشن دینی تھی، تو انہوں نے ایک ہندو کو پروموشن دی. تو کسی نے کہا کہ یہ ہندو ہے، تو انہوں نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا کہ اس کی صلاحیتیں ہیں، اس میں مذہب کو کیا دخل ہے. ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مہربانی، محبت، عنایات کا سلوک کرتے رہے. عبد الرحیم خان خانہ کی تاریخ کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فریق مخالف کے ساتھ کیسی کیسی فیاضیاں کی، اور کس کس طرح سے نوازا. اسے بالکل غلط ہے. 40,000 بہت بڑی فکر ہے. پھر ہر مسجد کے متعلق، ہر مندر کے متعلق ثابت کرنا پڑے گا ہسٹوریکلی کہ مسجد میں کب تبدیل کی گئی، اور یہ مندر کب تھا اور کب نہیں تھا، اور کس نے بنایا تھا، جبکہ پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے اور اس میں ایسے واقعات قطعاً نہیں. 99% امن رہا، اطمینان رہا. ایسے ایسے ہندو مل جائیں گے، سکھ مل جائیں گے، جنہوں نے مسلمانوں کی مساجد میں، مسلمانوں کے گاؤں میں کئی جگہ مساجد کے بننے کے لیے چندے دیے، اور انہوں نے کہا ہماری طرف سے یہ قبول کرے. یہ ہوتا رہا. کتنی صوفیہ کی خانقاہیں تھیں، ہندو لوگ آتے رہے اور آ کر انہوں نے مشائخ کی خدمت بھی کی اور عرض کیا کہ حضرت یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، آپ کو فرمائیں. تاریخ بھری پڑی. تو ایسے نہیں ہوا. कत अन छूट है, जो भी कहता है वो छूट बकता है, और उसे चाहिए कि वो 40,000 तो बहुत बड़ी चीज है, 1,000 साबित कर दे कि कैटेगोरिकली हिस्ट्री इसको प्रूव करती है कि 1,000 इन इन मसाजिद को फलां सन में तब्दील किया गया या नहीं तब्दील किया गया, क्या किया गया, 1,000 पे ही साबित कर दे, नहीं कर सकते। ये महज जज्बाती बातें हैं और महज ये है कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ साया जाए। एक सवाल ये तहरीर फरमाया है इस साहब ने कि कव्वाली में ये अल्फाज थे कि नबियां वर्गा पीर है साडा अब्दुल कादिर प्यारा, ये अल्फाज कैसे हैं? देखिए भैया, उसूल आप समझिए फतवे का। फतवा हमेशा लोगों की सहूलत के लिए दिया जाता है। फतवे का ये मकसद नहीं होता कि लोगों को किसी तरह गुमराह और काफिर करार दिया जाए, तो अच्छी से अच्छी तावील और तौजीह करते हैं। कि कवाली जिन्होंने भी पढ़ी होगी उन्होंने ये बस बात बयान की है कि हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे प्यारे बुजुर्ग थे, नबियां वर्गा नबियों की तरह वो पीर थे, यानी जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम से हजारों और लाखों लोगों को हिदायत मिली, शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह से भी हजारों और लाखों लोगों को उनसे हिदायत मिली, तशबीह दी है। फिर इससे क्या फर्क पड़ा? उन्होंने हजरत की तारीफ बयान की है और हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचा इस्लाम को उसका बयान किया, और ये तशबीहात होती रहती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कुरान इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जबान में नाज़िल हुआ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इतनी फसीह, इतनी बलीग, इतनी अच्छी अरबी बोलते थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाया ये कुरान की अरबी, ये आपको मलफूजात में मिल जाएगा। हजरत अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कुरान अगर उर्दू जबान में नाजिल होता तो शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा किया है उस तर्जुमे के टुकड़े अल्लाह की तरफ से नाजिल होते। तो ये सब तशबीहात होता और कोई हर्ज भी नहीं है। इसी जिसने भी हजरत की तारीफ किया उसने हकीकत में सही भी कहा, शाह अब्दुल कादिर साहब जिलानी रहमतुल्लाह से इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचा, उनके खुलफा से फायदा पहुंचा, अब तक उनका सिलसिला जारी है और अब तक लाखों करोड़ों लोग उस सिलसिले में मुंसलिक। कादरी राशिदी राशिदिया सिलसिला सिंध भरा पड़ा, और राशिदी असल में कादरी है, ये देवबंद के बड़े बड़े अकाबरीन वहां जाते थे, रेशमी रुमाल की तहरीक के जो मराकज थे उनमें से एक मरकज था। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को वहां से खिलाफत हासिल थी। हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते थे एक मरतबा इससे खुद हज़रत मदनी रहमतुल्लाह बयान फरमाया और कहा मुझे भी वहां से इजाजत है। और कादरी सिलसिला मौलाना अहमद खान साहब कादरी थे, इसलिए बरेलवी हजरात ने कादरिया सिलसिले का बहुत गलबा है, बहुत ज्यादा कादरी सिलसिले के लिए। ये जो उनके तबलीग के अमीर हैं मौलाना इलियास साहब, ये भी कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। तो किसी की सोच और फिक्र में कोई कजी गुमराही आ जाए ये अलग बात है, लेकिन इस बात पे जो इत्तेफाक है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से अल्लाह ने बहुत लोगों को हिदायत दी और लाखों आदमी जो उनके सिलसिले में दाखिल हुए और फिर हजरत रहमतुल्लाह की जिंदगी में बराह रास्त बहुत लोगों को नफा। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का नाम तो सुना ही है सबने, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कादरी थे। मालूम इसीलिए इसको ये वहाबियत के जो प्रचारक हैं ये बयान कभी भी नहीं करेंगे, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद थे अब कुद्दामा मुकद्दसी रहमतुल्लाह, और कुद्दामा खलीफा थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। तो भाई एक वास्ता हजरत का जुब्बा, हजरत का लिबास इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह तक पहुंचा। डरबन में है वो, पूरी किताबें एक जगह जमा है, वहां पे हजरत शेख इस्लाम तैमिया रहमतुल्लाह की सवाने भी है, उसमें ये किस्सा आया, उसे पूछे अब कौन जाए वहां और वहां से जाके निकाले। लेकिन इस कादरिया सिलसिले के मशाहिर एक से एक बड़ा। एक सवाल ये दरियाफ्त फरमाया है कि ऐसी किताब का नाम जिसमें नमाज रोजा वगैरह हज के फिक्री मसाइल हो, बहुत किताबें लिखी गई। हजरत अब्दुल शकूर साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फिक्र पे, वो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी है। इसी तरह नमाज के मसाइल पे आपने पूछा है तो मास्टर मोहम्मद अकरम साहब से उन्होंने किताब लिखी नमाज के मसाइल, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार, तो उनकी किताब छपती रही और अल्लाह ताला ने ऐसी कबूलियत दी कि वो किताब लाखों में छपी हो। उनके तकवा का, उनकी नेकी का हाल ये था कि बिल्कुल तालबे इल्मों से पूछते फिरते थे कि मैं ये मसला नमाज का लिखने लगा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है, मसला लिखूं कैसे है, किताबों में क्या लिखा है। उन्होंने नमाज के मसाइल नाम की एक किताब लिखी है, वो बहुत अच्छी। तीसरी किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे उस्ताद थे मोहम्मद रमी सब सवाती गुजरांवाला में मसनसतुलूम के, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। शरफियुद्दीन साहब रहमतुल्लाह के, जो शाहुल्ला साहब रहमतुल्लाह के साहबजादे थे, उन्होंने कसीदा लिखा था, हजरत ने देवबंद से मंगवा के वो छपवाया, और बू अली सीना का रद्द लिखा है शरफियुद्दीन साहब रहमतुल्लाह। तो हमने नदवी रहमतुल्लाह से पूछा था, हमने कहा सर वो अली सीना का है और फिर शरफियुद्दीन साहब इब्ने शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह ने उसका उसके खिलाफ लिखा है, तो अरबियत के एतबार से तो फरमाया वो अली सीना के अरबी से ज्यादा हजरत की अरबियत कवि है जानदार। तो मोहम्मद हनी साहब सवाती रहमतुल्लाह की किताब है नमाज मसनून, 700-800 सफहा की, नमाज पर उन्होंने बहस किया है, मसाइल लिखे हैं, अब वो पढ़िए, उसको उससे भी आपको बहुत फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। फिर एक सवाल ये दरियाफ्त फरमाया है कि गुनियतुत तालिबीन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब पढ़ना चाहता हूँ, वो क्यों है, नहीं पढ़नी चाहिए। तसव्वुफ की जितनी किताबें हैं बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, उसातजा से पढ़नी चाहिए, अपने पीर मुर्शिद से पढ़नी चाहिए। बराहे रास्त तसव्वुफ और हदीस इनका मुताला आदमी को गुमराह कर देता। हमने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जो वहदत शहूद या वहदत वजूद पर तनकीद करता हो और खुद इन मराइल से गुजरा। आप इस जुमले पर गौर फरमा लें, डॉक्टर कई एक मराइल से गुजरा हुआ होता है फिर वो बात करता है, जितने तसव्वुफ पे तनकीद करते हैं कई मरतबा ख्याल में आता है कि हजरत आपको मालूम ही नहीं कि वहदत वजूद है क्या, वहदत शहूद है क्या, ये कुफर है, ये चीजें, ये तो बताओ वहदत वजूद है क्या। एक साहब लाइब्रेरी के विजिट को तशरीफ लाए थे, जब उन्होंने इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें देखी तो उनके तो हजरत वजूद के आदमी थे, उन्होंने कहा जी क्या लिखे, तो काफिर थे। छुटते ही उनके वहदत उल वजूद होती क्या है कुछ पता नहीं था, अरब थे प्रोफेसर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, कुछ पता नहीं था उन्हें कि वहदत उल वजूद क्या है। हमने कभी कैसे काफिर करार दिया, एक चीज है उसकी हकीकत आपको मालूम नहीं है, आप कहते हैं कि इस बोतल में जो है ना ये हराम है शराब, वो कहते हैं जी शराब कहाँ है, ये जरा चट के देख लो सूंघ के देख लो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मेरी इस्लाह एक ने की हुस्ने जन में, तो पूछा गया कैसे, तो फरमाया मैं शाम के वक्त दजला के किनारे से गुजर रहा था मैंने एक लड़के को देखा उसने कालीन बिछाया, फिर एक खातून को लाके उसने बिठाया, फिर उसने सुराही रखी सब चीजें रखी और हवा चल रही थी और बहुत मोहब्बत से खुद भी पी रहा था और उस खातून को पिला रहा, तो मैंने खुदा की पनाह मांगी कि क्या बेहूदा ये चीजें। तो रास्ता था फिर मैं गुजर रहा था तो उससे मुझे रोका और उससे कहा हसन ये मेरी वालिदा है, फरमा रही थी घर में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है कहीं ले चलो, तो मैंने दरिया के किनारे लाया हूं ये शरबत इन्हें और मुझे बहुत पसंद है घर में बना के ले आए थे ये पी रहे। सुनाते मैं गैरत और शर्म से जमीन में गड़ गया कि मैं क्या सोचता था और ये आदमी क्या निकला, तो वाजतुल वजूद कुफर है। उसके बाद हमने इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के हवाले दिखाए कि शेख ने ये लिखा है, तो बे इख्तियार कहने लगे कि खुदा की कसम का मात्र उन्हें पढ़ा नहीं, उनकी फिर फतवे का शौक क्यों है ये क्या, खुदा को जवाब नहीं देना, जहरा बिल्कुल गैरत आनी चाहिए थी। तो यही चीज है, इसे बुनियाद तालिबीन पढ़ने की जरूरत क्या पेश आ गई, अब और चीजें पढ़ी बुनियाद बनाइए इल्म की। बस मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह किताब लिखी है तसव्वुफ क्या है वो पढ़िए, हजरत ने किताब लिखी है इस्लाम क्या है वो पढ़िए, हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने किताब लिखी है कि कुरान आपसे क्या कहता है, इस तरह की किताबें पढ़िए, उससे आपको इल्म भी आएगा, आपको पता चलेगा कि इस्लाम दुनिया में किन मकासद के लिए आया था और अल्लाह ने क्या चीजें हम पे फर्ज की हैं और किन चीजों से खुदा खुश होता है खुदा राजी। बुनियाद तालिबीन के बारे में कोई चीज नहीं है इसे पढ़ा जाए, और उनका उसका तर्जमा अब्दुद्दाइन जलाली नदवी रहमतुल्लाह के ऐसे ही जलाली, इन्होंने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी है और गालिबन इन्होंने तफसीर मजहरी का भी तर्जमा किया है। आपने तहरीर फरमाया कि ये रायपुर के थे हमें मालूम इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन गालिबन ये नदवा के पढ़े हुए थे, कुछ शक है इसमें तो नहीं होंगे तो ना होंगे, लेकिन ये कि ये बहुत बड़े बहुत साहिब इल्म आदमी। फिर आपने तहरीर फरमाया कि हजरत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के वतन रायपुर से ही इनका ताल्लुक था, ऐसे नहीं है, हजरत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो वहां लखनऊ से कुछ फासले पे रायबरेली, हजरत रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश वहीं की है, वही उनकी खानकाह थी, वही लोग थे, वही उनका खानदान था, उनकी खिदमत में वहां हाजिर भी रहे, लखनऊ भी हाजिर रहे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह का रायपुर में जो ताल्लुक था वो बैत का था, और असल में शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान में तबलीगी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग और अमीर मौलाना अब्दुल वहाब साहब, ये दोनों हजरात के आबा उस्ताद की हवेलियां और माने हुए थे पैसे में दौलत में, तो ये लोग वहां के थे, फिर ये हिजरत इन्होंने की, फिर और जगह आ गए, होते होते रायपुर में आबादी हो गई, तफसील है उसकी, तो रायपुर में ये हजरात थे। फिर शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह जो थे उन्होंने बैत कर ली थी शाह अब्दुल रहीम नाम ही के एक बुजुर्ग से, और वो सहारनपुर के थे, और सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला नक्शबंदिया में जो खामोशी का गलबा वो उनमें था बहुत ज्यादा, बातें नहीं करते थे, बिल्कुल चुप रहते थे। लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ गायबी इशारात हुए कि वो अभी कुछ चीजें रह गई हैं, उसे पूरा कर। तो उस मकसद के लिए वो फिर गंगोई, और बताया गया कि तुम्हारा वहां हिस्सा है। तो उस गंगोई ने रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगरचे आपको सब कुछ हासिल है, लेकिन मेरे यहाँ तो काम करना पड़ेगा। होता ये था कि कोई आदमी जब मुराकबे जात तक पहुंच जाता था तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह द्वारा कई कई बरस उसे उसी मुराकबे में चलाते रहते। इजाजत वगैरह कुछ नाम नहीं होता कि बस ये कर। इब्तदाई दौर में हजरत हुसैन साहब मदनी रहमतुल्लाह की भी कभी, लेकिन फिर हजरत रहमतुल्लाह के यहाँ कुछ नरमी आ गई थी और वो आखिरी मुराकबा तल्कीन करने के साथ ही खिलाफत की थी। ये सब चीजें हजरत रहमतुल्लाह की बात में आपको मिल जाएंगी। तो शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह के गंगो हजरत के पास पहुंचे तो उससे बैत नहीं करना है, बोला बैत की जरूरत नहीं है, बैत तो आपकी सबका भी काफी है, बस यही चीजें कर। फिर उनकी तरबियत, जो उनके मदारी की चीजें, फिर हजरत रहमतुल्लाह क्या कोई जिक्र अस्कार कुछ, मतलब इस एतबार से के खिलाफतें और पीढ़ी कोई ऐसी बात ही, कोई नुमाइश थी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी ने कहा हजरत आपके बाद किसके पांव पकड़े, तो फिर मैं अब्दुल कादिर कहता है कि वो यहाँ रहे, हालांकि हजरत को बाकायदा इजाजत थी और कमाल के हुजूर थे रायपुर में। यहाँ रायपुर में फिर हजरत मोहम्मद सली नदवी रहमतुल्लाह अलैह गए, ये दोनों दोस्त थे मां मंजूर नमानी और ये, तो मां मंजूर नमानी साहब पहले गए। तसव्वुफ क्या है उसकी इब्तिदा में उन्होंने बड़ा दिलचस्प हिस्सा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं जब पहुंचा तो मुझे तसव्वुफ पे बहुत ज्यादा इश्कालात तो मैंने हजरत से अर्ज किया, तो हजरत मगरिब के बाद बैठे हुए थे और लोग जिक्र कर रहे थे, तो मैंने जब अपने इश्कालात पेश किए तो हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों की तरफ देखा, फरमाया कि ये कुछ गरीब लोग आ जाते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं, और साहब आप बहुत ऊंचे काम हैं, आप जो इल्म और तालीम और तरतील मुनाजरा ये बहुत ऊंचे काम, तो ये बेचारे ऐसी गरीब आके अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इनको छोड़। बताते कि मैं समझ गया कि मेरे सवाल के जवाब के बजाय एक तरह से उससे हटना है। फिर मैंने अर्ज किया, फिर अगले दिन सुबह अर्ज किया, सैर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो उसमें मैंने अपना इश्कार पेश किया। फिर हजरत ने मुझे तसव्वुफ की हकीकत समझाई कि तसव्वुफ और सूफिया होते कौन है, करते क्या राहिमा। तो हजरत मोहम्मद अली नदवी रहमतुल्लाह इसके बाद आई और बैत हो गए, तो रवानी साहब रहमतुल्लाह बुलाते कि पहले मैं हाजिर हुआ था और बैत पहले मेरे दोस्त मौलवी साहब रहमतुल्लाह हो गए। तो रायपुर से हजरत रहमतुल्लाह का ये ताल्लुक था। फिर वहीं से हजरत एक मरतबा तशरीफ ले गए थे राय बरेली, तो एक दिन नमाज पढ़ के राय बरेली की मस्जिद से सब लोग निकले, तो हजरत मोहम्मद सली नदवी रहमतुल्लाह ने उनसे इशारा फरमा के कहा कि यहाँ पे हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह रुके थे। नमाज के बाद उनसे फरमाया था कि तुम्हें तमाम सलासी में इजाजत देता हूँ और खास तौर पे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह के सिलसिले पे, इस जगह हजरत रहमतुल्लाह रुके। ऐसी मोहब्बत में इरशाद फरमाया, तो उनका रायपुर से ये ताल्लुक था, बाकी राय बरेली लखनऊ से बतन तुम की। फिर आपने پھر آپ کا جو خیال ہے بنیاد طالبین کا اس پہ عرض کریں، ہمیشہ وہ کتابیں پڑھیں جو سہل آسان لٹریچر ہے اور جس سے ہمیں بنیادی طور پر دین کو سمجھنے میں آسان، اور وہ پڑھیں جن میں فقہی مسائل، اب رمضان آ رہا ہے وہ مسائل دیکھیے، رمضان کے کہاں لکھے ان کو آپ پڑھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے مکرو ہو جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹھیک رہتا ہے، رمضان کرنے کے اعمال کیا ہیں، یہ سب عملی زندگی کی چیزیں. تصوف کا ایک درجہ ہے کہ عام عامت الناس کو حاصل ہو جائے، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، نفرت نہ کرنا، یہ وہ چیزیں جو ہر ایک کے لیے فرض ہیں. اور ایک درجہ اس کے بعد آتا ہے، وہ پھر کم لوگ اس میں چلتے ہیں، اور وہ درجہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پھر عنایات مہربانی پہلے پہ بھی ہوتی ہیں، پہ بھی ہوتی ہیں. پھر وہ ایک روحانیت کی دنیا جو کھل جاتی ہے، اس دنیا کو عملاً طے کرنا پڑتا ہے، وہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی. اور فتوحات مکیہ جو ہے وہ اور خصوصاً فتوحات مکیہ کا مقدمہ نہیں پڑھا کسی نے، شاید انہوں نے لکھا اس پہ کہ مجھے حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جا کے رمضان گزارو اور جو کچھ تم پہ بیتے وہ لکھو. تو جو مجھ پہ وہ بتاؤ شروع ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لکھنے سے قاصر ہوں، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کیا صورت بنے گی. تو اسے فرمایا، کہا گیا کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اگر تم نہیں مانتے. وہ فتوحات مکیہ، فتوحات مکیہ پڑھنے والے کہاں رہے اور پڑھانے والے کہاں رہے، ملا صدرہ کو سمجھنے والے کتنے رہے. تو اس لیے یہ تصوف کی جو اعلیٰ کتابیں ہیں، یا تو آدمی خود اس وقت پڑھے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ذکر اذکار مراقبات سے خود گزرا ہوا ہو تو پھر خیال آتا ہے کہ اچھا یہ وہ چیز تھی جو پیش آئی تھی، اچھا یہ وہ چیز تھی جو اس طرح سے ہم نے اپنے مشائخ سے سنا، فرماتے تھے یہ بات جو میں نے پڑھی فلاں کے ہاتھ، مجھے خیال ہوا کہ 27 سال پہلے یہ چیز گزری تھی، تو پھر اس مقام کی سمجھ آ گئی. یہ ہوتا ہے، اس لیے یا تو آدمی خود اتنا طے کیا ہوا ہو اور اس کو پڑھے، اور یا پھر کوئی اس زمانے میں بزرگ ہو جن چیزوں کو سمجھا سکے اس سے. یہ چیز اجازت دیں گے جناب؟
جی مفتی صاحب
جی، کام سے آ جائیں.
جی جی،
آدھا گھنٹہ ہو گیا شاید.
جی آدھا گھنٹہ ہو گیا. جی
تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ.
بہت شکریہ جی،
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.